ओम शांति। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? शिव बाबा की शक्ति। और उसमें भी कौन सी शक्ति है? जी, स्नेह की शक्ति। राइट। तो स्नेह की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। हर मनुष्य के जीवन में उसकी मां का बहुत अहम रोल रहता है। जो मां बच्चे में संस्कारों का पोषण करती है, जो उसका लालन पालन करती है, जो सिखाती है, उसी अनुसार उस बच्चे की आगे जीवन गाथा गाई जाती है, अथवा कहो उसी अनुसार उसका जीवन चलता है। तो मां की ममता संसार में उसके बहुत उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। आज भी हमारे जीवन में मां बनकर कौन आया है? ब्रह्मा बाबा, माता पिता के रूप में। तो ब्रह्मा बाबा माता पिता के रूप में हमारी जो शुभ आशाएं हैं उनके बारे में बाप दादा आपस में रूरान कर रहे हैं, क्योंकि मां बच्चों की कमजोरियों का वर्णन नहीं करती है, बल्कि उनको छुपा लेती है, समा लेती है और बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करती रहती है। 99 भी खामियां हों, कमियां हों, उनका गुणगान नहीं करेगी, लेकिन बच्चे की एक विशेषता हो, उस विशेषता के आधार पर ही वो जीवन को संवारती है, सजाती है, श्रृंगारती है। ऐसे ही हमारी ब्रह्मा मां हम सब अपने अपने जीवन में तो अनुभव करते ही हैं, कितनी सारी खामियों को नजरअंदाज करके बाबा ने हम सबको विशेषताओं से श्रृंगारा, संवारा, सजाया। जो ब्राह्मण जीवन में अभी दिखाई देती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं, लेकिन पहले वो नहीं थी, कैसे विकसित किया उनको। तो मां का बहुत अहम रोल होता है। एक बार एक बच्चा स्कूल में जाता है, उसके पिताजी की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है, पिताजी का मुंह नहीं देख पाता। तो मां थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती है, ज्यादा नहीं, तो उसको स्कूल भेजती रहती है। तो स्कूल से प्रिंसिपल बच्चों का बीच बीच में रिपोर्ट कार्ड भी भेजते रहते हैं अभिभावकों को कि आपका बच्चा कैसा है। तो बच्चा नियमित रूप से स्कूल जाता था, लेकिन वो टीचर की शिक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता था, बहुत गुमसुम रहता था, उदास रहता था, जो पढ़ाई टीचर पढ़ाता था उसको याद नहीं कर पाता था, दूसरे बच्चों से अलग अलग रहता था। तो टीचर ने एक बार एक खत लिखा मां के नाम कि आप, और उस बच्चे को दे दिया कि आप इस खत को अपनी मां को दे देना। तो बच्चे ने वो पत्र लिया, लेटर लिया और घर जाकर मां को दे दिया। तो मां ने पढ़ा तो खत में क्या लिखा होगा कि आपका बच्चा बहुत निलायक है। तो उसने तो जो लिखा था वो तो लिखा ही था, लेकिन मां ने क्या पढ़ा? बच्चे ने मां से पूछा खत में क्या लिखा है। तो मां ने उसको बताया कि प्रिंसिपल ने लिखा है कि आपका बच्चा इतना होशियार है कि हमारे स्कूल में उसको पढ़ाने के लिए कोई योग्य टीचर नहीं है, इसलिए कृपया आप इस होबनहार बच्चे को किसी दूसरे स्कूल में दाखिल कीजिए। ये मां ने पढ़ के सुनाया, हालांकि लिखा तो कुछ और ही था। तो मां ने उसको पढ़ के सुनाया, तो बच्चे ने सुना तो उसके अंदर विश्वास जागृत हुआ कि मैं इतना प्रतिभाशाली हूं, इतना विवेकशील हूं कि उस स्कूल में मुझे पढ़ाने के लायक कोई टीचर ही नहीं है। तो खैर, मां ने तो पढ़ लिया, उसकी कमी कमजोरी छिपा ली और उसको दूसरे स्कूल में दाखिला दे दिया। अब उसके अंदर एक आशा की किरण, उम्मीदों की किरण जग गई, फेथ जागृत हो गया अपने प्रति, क्योंकि माँ ने जो सुनाया और वो भी टीचर ने लिख कर दिया हुआ है, तो और ही उसके अंदर विश्वास बैठ गया अपने प्रति। आज भी मुरली में था ना फेथ, तो उसको उसको विश्वास बैठ गया, आत्मविश्वास बहुत मजबूत हो गया उसके अंदर। तो दूसरे स्कूल में जहां दाखिल किया वहां भी नियमित रूप से पढ़ाई करने लगा और धीरे धीरे बहुत प्रोग्रेस करता गया, पढ़ लिख कर बहुत मेहनत की, कड़ा परिश्रम किया और IAS बन गया। IAS बन गया और कुछ दिनों के बाद, फिर IAS बनने के बाद उसकी माँ चल बसी, तो उसका माँ से बहुत लगाव था, अटैचमेंट थी। तो जब माँ चल बसी, सारा पूरा क्रिया कर्म करने के बाद घर में उसके सामान को देखता है, उसका चश्मा पड़ा हुआ है, उसको देख के रोता है वो, उसके हाथ की रोटियां खाता था वो चूल्हे चौके में, वो देखता है तब उसको रोना आता है, उसके कपड़े पड़े हुए हैं, अलमारी में उसका सामान पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे सब सामान को देखता है तो उसको बहुत आंसू आते हैं कि मेरी माँ ने कितना परिश्रम करके मुझे पढ़ाया लिखाया। और ऐसे ढूंढते ढूंढते उसका हाथ एक कागज के ऊपर जाता है, जो उसने 20-25 वर्ष पहले वो चिट्ठी दी थी जो टीचर ने लिख कर दी थी, तो वो उसको पकड़ता है, खोलता है, पढ़ता है, तो क्या लिखा, आपका बच्चा बहुत सुस्त है, ये पढ़ने लायक नहीं है, इसकी बुद्धि मंद बुद्धि है, तो हमारे बच्चों को स्कूल को खराब कर देगा ये, उसमें ये लिखा था। जब उसने पढ़ा तो उसको माँ के प्रति कितना प्यार आया होगा, माँ की शुद्ध ममता गाई है, आज की मोहल्ले में था ना, माँ की शुद्ध ममता। तो संसार में केवल एक माँ ही है जिसकी ममता शुद्ध होती है, क्योंकि निस्वार्थ रूप से बच्चों की पालना करती है। तो वो IAS बनने के बाद फिर देखता है माँ और उस स्कूल को भी कि उस टीचर ने क्या लिख कर दिया और मैं क्या कर रहा था और माँ ने मेरे प्रति क्या सोचा। ऐसे ही यहां भी हम अगर तुलना करें उस स्टोरी से, तो यहाँ शिव बाबा हमारा पिता है और ब्रह्मा हमारी माता है। तो माँ की हर बच्चे के प्रति कितनी ऊंची अवधारणाएं होती हैं, कितनी ऊंची उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती हैं कि बच्चे को बाप से भी आगे बनाती है। बाप समान तो बनाती बनाती है, लेकिन बाप से भी आगे देखना चाहती है। तो आज की मुरली के ऊपर बाबा की जो शुद्ध ममता है माँ के रूप में, हम बच्चों के अंदर कितनी कमी कमजोरियां भी हैं वो भी सारे मुरली में वर्णित हैं और विशेषताएं भी हैं। तो अगर हम एक दर्पण बनाकर मुरली को झांके, मुरली के अंदर देखें, तो कितने सारी हमारी कमी कमजोरियों को माँ बनकर भगवान ने छिपा दिया, नजरअंदाज कर दी, हमारी विशेषताओं को कैसे उभारते हैं। तो आज कौन किससे मिल रहा है, बाप रूप में मिल रहे हैं जी, माता पिता के रूप में, और हाँ आज वो बाबा उस रूप में मिले जो संसार की सभी आत्माओं की आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे बाप दादा उन बच्चों से मिल रहे हैं जो बच्चे भी संसार की आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। क्यों पूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि बाप भी वैसे तो बच्चे भी वैसे होंगे। तो ऐसे शुभ आशाओं के दीपक बच्चों को देख रहे हैं, हम सभी दीपक हैं अर्थात रोशनी देने वाले हैं, है ना। सवेरे एग्जाम्पल बताया ना जगदीश भाई जी का, कैसे वो जी कैसे शुरुआत में जब जगदीश भाई जी यहाँ आए तो कैसे बाबा ने उनको होमवर्क दिया एक लेटर लिखने के लिए, VIP को संदेश देने के लिए। तो जगदीश भाई जी रात को रोशनी में, खंबे की रोशनी में, रोड लाइट पर या टॉर्च की लाइट से वो लेटर सवेरे पूरी रात लिखते लिखते कैसे। तो ऐसी आत्माओं के ऊपर भगवान को कितना फक्र होता है। तो कम से कम हम उतना नहीं करते हैं जितना अपने जीवन में करना चाहिए। अपने आप को तो संपूर्ण परिवर्तन करने की चिंता तो करें, है ना। तो हम संसार के आगे जगमगाते हुए दीपक हैं। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत, टिमटिमाने वाले नहीं, टिमटिमाते दीपक बाबा कितने अच्छे नहीं लगते। तो सदा जागती ज्योत बने रहें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज ज्ञान का घृत डालना पड़ेगा। घृत कैसे डालेंगे? केवल सुनने तक सीमित नहीं, पहला काम है सुनना, पहली सीढ़ी है सुनना। मुरली का रिगार्ड कल भी क्लास में बताया ना, किस किस चीज का रिगार्ड रखना चाहिए, कितनी बातें सुनाई थी शाम तक, कितनी बातें होंगी, 21 बातें थी। ऐसे हम अपना निकाल सकते हैं। तो रिगार्ड कितना है? तो मुरली के बीच में जो हमको खुराक मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, जिससे आत्मा सशक्त बनती है, आत्मा का प्रकाश बढ़ता है, ओरा बढ़ता है, आत्मा में नई रोशनी आती है, नई ऊर्जा आती है, शक्ति बढ़ती है, तो उससे हम आत्मा दीपक सदा जगमगाते रहेंगे। अर्थात जब भी कोई समस्या परिस्थिति आएगी, माया आएगी, तो उसका हम सहज रूप से सामना कर सकेंगे, घबराएंगे नहीं, गहराई में जाएंगे, है ना। पिछले संडे की मुरली में ना था ना, कौन से बच्चे है जो घबराते नहीं है, पिछले संडे की मुरली में था, जो सहनशीलता वाले, सहनशील कभी घबराएंगे नहीं, गहराई में जाएंगे, है ना। तो हर बात की गहराई में तब जाएंगे जब हमने अपने मन को ज्ञान रत्नों से भरपूर करके रखा है, क्योंकि इस कर्म क्षेत्र पर पता नहीं कौन सा पॉइंट कब काम में आ जाएगा। परिस्थितियां हर पल बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं है जो हम सवेरे अपना टाइम टेबल बना के रखें उसी अनुसार हमारी दिनचर्या चलेगी, परिवर्तन हो सकती है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। देख, क्योंकि हमने अनेक प्रकार के कर्मों के बीज बोए हुए हैं जो हमको फल के रूप में सामने तो आने ही, चाहे वो खट्टा फल हो या मीठा फल हो, चाहे फीका हो, आएगा तो सामने जरूर। लेकिन उसका सामना करने के लिए, उस फल को पचाने के लिए ज्ञान अगर हमारे पास में है तो हम उसको हजम कर सकते हैं, अर्थात उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, तो स्थिति हमारी शक्तिशाली रह सकती है। तो सबसे पहली बात थी, हम हैं शुभ आशाओं के दीपक, वो दीपक जो संसार की सर्व आत्माओं को, आत्माओं की आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पिता भी सर्व संसार की सर्व आत्माओं को, आत्माओं की आशाओं को पूर्ण करने वाला है। और आशाओं को जो पूर्ण करता है उसको क्या कहा जाता है दूसरी टाइटल में? सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु। तो हम मम्मा को कामधेनु कहते हैं ना। तो ये थे कि हम शुभ आशाओं के दीपक हैं। अच्छा, अभी आप बताओ और क्या बोला मुरली में बाबा ने, क्योंकि दोनों तरफ से रू रान होनी चाहिए। बाबा ने फिर उसके आगे रू रान की, बाप और दादा की रू रान थी, है ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की रू रान। तो कैसे रू रान की होगी उन्होंने ऊपर, जरा देखो दृश्य नहीं, ऊपर ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा है, तो रू रान कैसे की होगी? मन ही मन बैठ के सोच रहे होंगे कौन किसको कह रहा होगा, कैसे कह रहा होगा, कहां बैठे होंगे, चौकड़ी मार के बैठे होंगे, कैसे बैठे होंगे, है बगले में बैठे होंगे। लेकिन शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बोल सकता है, अब खाली शिव बाबा वहां बैठे तो बोलेंगे कैसे, हैं बगले में बैठ के बोलेंगे, या तो ब्रह्मा की फोटो कॉपी होगी, एक दूसरा बाजू में बैठा होगा, है ना, एक इधर होगा, एक साकार के रूप में, एक आकारी रूप में, और बीच में निराकारी होगा, है ना, क्योंकि बीच में बताया ना साकार बाप साकारी है ब्रह्मा बाबा, तो साकार रचना के साथ ज्यादा प्यार रहता है। तो क्या रू रू अनुभव बाबा की? हाँ, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि आपकी बच्चों के प्रति कौन सी आशाएं हैं, है ना, तो कौन कौन सी आशाएं हैं? बाबा ने तो दो ही बताई हैं, और दूसरी आशा को पूर्ण करना बहुत मेहनत वाला काम है। कौन सी है दूसरी आशा? ब्राह्मण परिवार की शुभ आशाओं को, शुभ भावना, शुभ कामना सबके प्रति रखना, ये थोड़ा सहज काम है। अच्छा, इस काम को सहज कैसे करें फिर, क्योंकि मुख्य काम तो यही है। बाकी मुरली की शिक्षाएं तो हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, विधियां हैं, उस उन आशाओं को पूर्ण करने के लिए। लेकिन मुख्य ये आशा है हर आत्मा को, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहे। कैसे रहेगी? मुख्य काम तो ये है सबको आत्मा देखना। लंबे समय ते बाबा ने कहा ना, इसमें महारथी भी फेल हो जाते केवरी मुरली में ना। अब हम 30-35 साल से तो आत्मा देख ही रहे हैं, और 35 साल के बाद जिसके साथ हमारा बहुत प्यार था उसको हम अपना भी समझते थे, आत्मिक रूप से भी हम एक दूसरे का प्रोग्रेस करने के लिए चर्चा भी करते थे, अचानक वो सामने से बोला ना हुज्जत से जो बोलता है तो उसका बोल जो है खराब नहीं लगता है ना, और वो अगर ऐसा वैसा बोल बोल देता है और अंदर में दिल में सीने में एकदम खून बहता है, फिर भावनाएं सारी फेल हो जाती हैं, भाव भी बदल जाते हैं। तो कैसे हो भावना हर आत्मा के प्रति? सोमान की दृष्टि से, सोमान में रहने से, और साक्षीपन। लेकिन उसमें साक्षी बड़ा मुश्किल टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर कैसी होती है? ये ऐसी टेढ़ी ना, बर्तक की गर्दन की तरह चेंज कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए योग बल और ज्ञान बल, उसके लिए चाहिए ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को हम बार बार पढ़ें। संसार में बहुत सारी ऐसी आत्माएं भी हुई हैं, धर्म आत्माएं, जिन्होंने बहुत कुछ सहन किया, जिनकी जीवनियां भी कई जानते होंगे, कितनी बार की छोड़ उछाला, लेकिन फिर भी अपना धर्म कर्म नहीं छोड़ा उन्होंने, क्योंकि अध्यात्म से वो अध्यात्म से भरे हुए थे वो। तो ऐसे हमारे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी जो किताब है, जिसका सवेरे भी जिक्र किया ना जगदीश भाई जी ने बनाई है, दो पढ़ने से अंदर में जैसे खून में ना परिवर्तन होने लगता है। पुरुषार्थ में तेजी कैसे आती है? मुरली तो सुनते हैं, लेकिन जो यज्ञ का इतिहास है, जो प्रारंभिक दौर से जिन परिस्थितियों से दादियां गुजरी हैं, ब्रह्मा बाबा गुजरे हैं, बताया ना सहनशीलता में नंबर वन आदि देव भी क्यों बना, नंबर वन पूज्य क्यों बना, क्योंकि हर चीज में ब्रह्मा बाबा, अगर प्रेम सबसे मिला तो प्रतिष्ठित है पहले, तो ब्राह्मण बनने ब्रह्मा बाबा से पहले दादा लिख रहा है तो बहुत प्रतिष्ठित नामी ग्रामी व्यक्ति थे, लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा बने तो सबसे ज्यादा गालियां भी उनको मिली, अच्छा बच्चों को भी मिली, लेकिन अप्रोक्ष रूप से तो गालियां सीधा ब्रह्मा बाबा को जाती थी, क्योंकि लोग तो यही कहते थे इनको बिगाड़ने वाला कौन है, तो कितनी गालियां मिली, लेकिन ब्रह्मा बाबा की स्थिति कैसे एक रस रही। इसलिए ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को पढ़ने से वो सारे वाइब्रेशन हमारे अंदर समाहित होने लगते हैं, हमारी कर्म इंद्रियों के अंदर वो वाइब्रेशन, हमारी सोच चेंज हो जाती है सबके प्रति। किसी भी प्रकार की कोई भी आत्मा अगर हमारे सामने आती है, अभी भी अगर हमारे में हलचल होती है या सम दृष्टिकोण नहीं है, किसी को अपना देखना, किसी को पराया देखना, तो माना हमारे अंदर अभी सबके प्रति स्नेह की दृष्टि ऊंची नहीं बनी है। इसलिए जो यज्ञ इतिहास है, यज्ञ इतिहास की जो महान विभूतियां हुई हैं, दादियां, उनके जीवन कहानी को, ब्रह्मा बाबा मम्मा उनकी जीवन कहानी को पढ़ना बहुत आवश्यक है, और वो जीवन कहानी मुरलियों से भी ज्यादा छप जाती है बुद्धि में, और फिर उसके आधार पर मुरली को याद रखना बहुत आसान होता है, क्योंकि मुरली भी एक कहानी की तरह ही है। जब वो उनकी साकार जीवन की कहानी हमारे मन बुद्धि में बैठती जाएगी तो मुरली भी धीरे धीरे, मुरली के अधिक से अधिक पॉइंट हमारी बुद्धि में बैठना आरंभ हो जाएंगे, नहीं तो ऊपर से इधर से सुनेंगे और इधर से निकल जाएंगे, कुछ याद रहेंगे कुछ निकल जाएंगे, और समय आने पर जो शस्त्र हमको चलाना चाहिए वो हमारे हाथ में होगा ही नहीं, बोल हमारे में कहीं बंद पड़ा होगा, लेकिन समय पर हमें याद ही नहीं है कि हमारे पास ये वे हथियार है नहीं। इसलिए यज्ञ इतिहास से परिचित होना बहुत आवश्यक है, लाजमी है, जरूरी है। तो आज ब्रह्मा बाबा रूरान कर रहे थे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, तो बच्चों के प्रति दो आशाएं बाबा ने कहा है ना, दो आशाएं कौन कौन सी? पहली थी बाबा कहते साथ तो मैं ले जाऊंगा सबको, शिव बाबा ही ले जाएंगे, लेकिन बाद में बाबा साक्षी हो जाएंगे, क्योंकि पार्ट बजाने तो आएंगे नहीं वो, अगर आए तो फिर फंस जाएंगे, इसलिए वो आएंगे नहीं, क्योंकि पता मैं फंस जाऊंगा, इसलिए बाबा ऊपर ही बैठे रहेंगे, और ब्रह्मा बाबा भी साथ ले जाएंगे, लेकिन साथ में आएंगे भी, है ना। तो ये बाबा की रूरवान हो रही थी, तो बाबा ने कहा यथाशक्ति, स्नेह के प्रमाण, शक्ति के प्रमाण और अटेंशन प्रमाण, बच्चे अटेंशन तो देते हैं कि हाँ हमको बदलना तो जरूरी है, हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा, अपने आप को बदलने की प्रतिज्ञा तो करते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। उसके लिए एक और कारण बताया, कौन सा? डैश और डैश में अंतर है, किसमें? सोचना और करना, इस दोनों में अंतर पड़ जाता है। क्यों अंतर पड़ जाता है? उसमें तीन बातें आ जाती हैं फिर, संगठन के संस्कार, माया के शक्ति आ जाती है, माया के रूप में कई सारी बातें आ जाती हैं, तीसरी प्रकृति के सरकमस्टांस जो भी है। प्रकृति एक तो बाहरी प्रकृति पांच तत्वों भी, और दूसरा है सबसे बड़ी वाली देह की प्रकृति जिसके हम अंदर ही रहते हैं। अब इसमें तो बहुत सारी बातें होती है ना, सारा दिन तो इसी के साथ रहना 24 आवर, इसको बोलना को सहज काम थोड़ा नहीं है। तो बाबा ने कहा यथाशक्ति, तो बच्चे लगे ही रहते हैं अपने आप को मना बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने के लिए, लेकिन ये अंतर पड़ जाता है। और इस अंतर को मिटाने के लिए एक बैलेंस की जरूरत है, किसकी? याद और सेवा। और इस बैलेंस को, याद और सेवा के लिए बैलेंस के लिए एक और बैलेंस बताया, बाप का स्नेह और परिवार का स्नेह, दोनों पलड़ा एक समान। तो उन्होंने कहा स्नेह में तो बच्चे बहुत पास हैं, स्नेह की माला तो बहुत लंबी है लेकिन विजय माला छोटी हो जाती है। स्नेह के लिए बाबा सबको सर्टिफिकेट दे देते हैं लेकिन विजयी बनने में वो नंबरवार है, है ना? तो स्नेह के लिए बाबा कितने लड़ियां तो लगा देंगे, 160, चिंता नहीं करो आप। तो वास्तव में वो तो बाद की बात है, लेकिन इस समय हम अपने आप को भगवान के प्यार से संतुष्ट अनुभव करें, और दूसरा मुख्य रूप से ब्राह्मण आत्माओं से संतुष्ट रहें, सबसे बड़ी मुख्य बात वो है। क्योंकि सारे दिन में जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में रहना है, जो दो चार कुछ अच्छे अच्छे बोल भी सुना देती हैं उनको समाना है, और जो सुनाता है उसके प्रति अच्छा भी सोचना है, फिर रास्ता भी नहीं काटना है, रहना भी उनके साथ ही है, सेवाएं भी करनी है, संपन्न भी वही है बनाने के लिए निमित्त है, हिसाब किताब खींच के लाए हम एक दो के पास लेकर आए हैं वो, तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। तो स्नेह में तो बाबा संतुष्ट हैं लेकिन विजयी बनने में नंबरवार हैं। तो विजयी बनने के लिए बैलेंस चाहिए, कौन सा? याद और सेवा। और याद और सेवा के लिए बैलेंस चाहिए परिवार के प्रति शुभ भावना और शुभकामना, और उसके लिए चाहिए बैलेंस, स्नेह का बैलेंस भावन का। जैसे बाप से पूरा स्नेह है ऐसे बच्चों से भी पूरा स्नेह चाहिए। तो कितना बड़ा ये हमारे परीक्षा का स्थल है कि हर आत्मा के प्रति स्नेह, किसी से भी कामना हो कोई भी, तो स्नेह की सब्जेक्ट बहुत बड़ी है। और अगर हमने अपने जीवन को स्नेहमय बना लिया, निस्वार्थ स्नेह से संपन्न कर लिया, तो इसमें चलना फिर आसान होता है। इसमें बहुत सारी चीजों का हमको अटेंशन रखना पड़ेगा। स्नेह हमारा कम क्यों होता है? एक तो जब हम दूसरे की कमी कमजोरियों को देखते हैं या दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो स्नेह कम होता है। और स्नेह कम क्यों होता है? कोई नुकसान कर देता है या हमारे प्रति किसी को उल्टी सुलटी बात सुना रहा है, गलतफहमी, जो बाबा ने कहा ना, गलतफहमी भी हो जाती है बच्चों को, है ना? बाप के प्रति बच्चों को गलतफहमी कोई नहीं है, बाप के ऊपर तो सभी फिदा हैं, कोई कितना भी कुछ कहे लेकिन बाप के स्नेह से बच्चे जुदा नहीं हो सकते। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार से भी ऐसा स्नेह चाहिए। तो जैसे बाप से स्नेह है, बाप की शिक्षाओं से स्नेह है, जितना जितना हम उस स्नेह से परिपूर्ण होते जाएंगे, भरपूर होते जाएंगे, तो परिवार के प्रति भी हमारा स्नेह बढ़ता जाएगा। तो सबके हमको अवगुण देखने के बजाय गुण देखने हैं, है ना? दादियां कहती थी कि आपस में वर्कशॉप करो। मनोहर दादी जी, रतमन दादी जी के भी मिलते थे इधर, तो कहते थे आपस में वर्कशॉप करो, कौन सी? एक दो के गुण देखो आपस में। तो दूसरों को देखना और खुद ही पहले अपने गुणों को भी खुद एक लिस्ट बनानी चाहिए कि मेरे अंदर कौन कौन से गुण है। पिछली दफा भी हमने इधर बताया था कि अपने गुणों की लिस्ट, तो अभी सभी अपने अपने गुण बताओ, कोई नहीं बताता, क्यों नहीं? तो अपने गुणों पर चिंतन करना है ना? ये गीत भी है ना, कौन सा? कोई गुण और अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। तो हम तो भगवान की ओर से श्रृंगारे हुए, गुणों से श्रृंगारे हुए गुण मूर्तियां हैं। यहाँ लिखा ना 32-36 गुण, उनमें से देखना हमारे अंदर कौन कौन सा गुण है और कौन कौन से गुण में कमी है। तो स्वयं में बढ़ते जाएंगे तो सबके गुण देखने हैं, और एक ना एक तो गुण सबके अंदर है ही है। कौन सा? जिसका बाबा जिक्र भी करते हैं, कौन सा गुण है? भगवान को पहचानने का गुण है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी, भगवान को पहचानने के बाद कौन कौन से गुण आ गए। कि हमने जो संसारिक हमारा दृष्टिकोण था चेंज हो गया, हमारा एक गुणग्राह की दृष्टि हो गई है। जैसे बताया ना आत्मा देखना, अब संसार में ऐसी सोच है कहीं आत्मा देखने की? तो कितना बड़ा गुण है ये। देखो देखने से तो परेशानी होती है, देख के देखने वाली ममता कौन सी है? वो है परेशान करने वाली। तो है ना, मांग की ममता क्या है? मांग की ममता शुद्ध ममता जो शान में स्थित करती है, परेशान नहीं होती है। तो देह के देखने से ही तो हमारे कई प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। तो बाबा ने हमारी दृष्टि चेंज कर दी, आत्मिक दृष्टि। तो कितना बड़ा गुण का विकास हो गया ये। और कौन कौन सा गुण विकास हुआ ब्राह्मण बनने के बाद? ब्राह्मण बनने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, इस पर बीच बीच में एक निबंध लिखते रहना चाहिए खुद को। क्या परिवर्तन हुआ? हाँ जी, बिंदी लगाना। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बिंदी लगा दी तुरंत, कितना सहज काम है। कितनी बिंदी लगा देती सारे दिन में? एक कमाई की बिंदी, बिंदी के आगे लगाते जो बाबा कहते ना कमाई होती जाती है ना, तो फुल स्टॉप लगा देते हम, ड्रामा कह देते हैं। साक्षी आज भी की मुरली में था, ड्रामा और साक्षी की बात कहां पर? साथी साक्षी के बाद एक और ड्रामा की पॉइंट थी, बताओ। वो भाई जी ने बता दिया। हाँ, जो ड्रामा के अनुभवी आत्माएं हैं वो साक्षी रहेंगी, और साक्षी होकर क्या करेंगी? बुराई में भी अच्छाई को देखेंगी वो, अकल्याण में भी कल्याण को ढूंढ लेंगी, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी मिला हुआ है, तो ब्राह्मण भी तो कल्याणकारी है ना। अगर हमारी कोई नुक्ताचीनी करता है, कोई हमारे ऊपर टोंड करता है, तो हमारे कल्याण के लिए है वो। अगर हम ज्ञान से भरपूर हैं तो सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। क्योंकि जिसने पहले ज्ञान से स्वयं को भरपूर कर लिया तो दूसरे का दूसरी बातें थोड़ी नहीं जाएंगी। पहले अमृत से अपने आप को भरपूर कर लिया तो फिर विष जाएगा कैसे? मार्जिन रखनी है उतनी। तो इसलिए पहले होता है ज्ञान बल और योग बल को बढ़ाते जाना है। तो दूसरी कौन सी चेंज होगी? हमारी दृष्टि वृत्ति चेंज होगी, हमारा खाना भी शुद्ध हो गया। तो एक तो भोजन है, ब्रह्मा भोजन की महिमा, और दूसरा विचार, विचारों की शक्ति, संकल्प। हमारे संकल्प कैसे आते हैं? दुनियावी संकल्प कैसे होते हैं? पहले तो संसार में संकल्प बोलेंगे तो पता नहीं चलता था क्या होता है, मुझे संकल्प आया। अब जब हमने पहली बार सुना तो ये भाषा ही दूसरी है, संकल्प आया कहां से आ रहा, कोई चीज तो दिखाई नहीं दे रही है। तो कितनी हमारी वो चेंज ही होगी, भाषा ही चेंज होगी, टोटल हमारा संसार ही चेंज हो गया। तो ऐसे संसार के हम भाती हैं तो कितनी सारी विशेषताओं से भर गए हमारी सोच, अर्थात जो आत्मा को भोजन हम खिलाते हैं वो कितना शक्तिशाली भोजन है, डायरेक्ट प्योर है, एकदम पवित्र, उसमें कोई मिक्सचरिटी नहीं है, कोई उसमें केमिकल नहीं मिला हुआ है, एकदम शुद्ध है। आजकल तो केमिकल वाला भोजन होता है ना, कितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं, लेकिन बाबा रूहानी सर्जन है, सुप्रीम सर्जन है, आत्मों के अंदर जो अनेक जन्मों की बीमारी लगी हुई है, तो मुरली सा जो खजाना है, इतने ऊंचे ऊंचे शुद्ध विचार है, शुद्ध संकल्पों का भोजन बाबा हमको रोज खिला के रिफ्रेश कर देता है, आत्मा में जैसे शक्ति आ जाती है, है ना, नए विचारों की उत्पत्ति होती है। मुरली को जितना बार पढ़ेंगे नए नए विचार आने लगेंगे, मन बुद्धि उसमें बिजी रहने लगेगा। और कौन सा परिवर्तन हो हमारे में? हाँ जी, हद से बेहद में चले गए, सब अपने लगते हैं, उसके लिए कोई पराया नहीं है। बताया ना बाबा ने, स्नेह में कोई पराया अपना नहीं है, सब एक हैं। और स्नेह में क्या होगा, एक दो को आगे बढ़ाएंगे। ब्रह्मा ने एग्जाम्पल दिया ना अपना, ये थोड़ा सोचा मैं ब्रह्मा हूं तो मैं सबसे आगे रहूं, बच्चों को आगे बढ़ाया, मेरी सेवा, मेरा प्लान, मेरी बुद्धि, ये थोड़ा नहीं बोला, बच्चों को आगे बढ़ाया। तो ऐसे ही हम सभी उसी दृष्टिवृत्ति वाले हद से बेहद में निकल गए, व्यापक दृष्टिकोण हो गया, विश्वव्यापी हो गया, कोई पराया रहा ही नहीं अभी। जब हमारी ये मेंटालिटी हो जाएगी तो किसी के प्रति अशुभ भावना आ ही नहीं सकती है, बेहद की भावना का विकास होता जाएगा धीरे धीरे। तो दृष्टि वृत्ति चेंज होगी, सोच चेंज होगी, संकल्प चेंज हो गए, हद से बेहद में चले गए, और क्या हुआ? हाँ जी, रियलाइजेशन होगी। कौन सी? महसूसता आ गई। हाँ, अपनी भी महसूसता आ गई कि मैं कौन सी देवकुल की महान आत्माएं हूं, अनेक बार मंदिरों में बैठी हूं दुर्गा बन के शेर के ऊपर। अब जो शेर के ऊपर होगी तो ताकतवर होगी ना वो, है? अशरीपन का अनुभव हो गया। तो हमारे अंदर देवत्व जागृत हो गया एकदम, क्योंकि हमारी सोच बहुत ऊंची है, छोटी सोच हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम छोटे कुल के हैं ही नहीं है, ब्राह्मण छोटी कुल के हैं, छोटी माना बहुत ऊंचा। तो ऊंचे कुल के भाती हैं हम, ऊंचे कुल के महान देव आत्माएं हैं, तो देवत्व हमारे अंदर जो जागृत हो चुका है, तो फिर हम छोटी सोच कैसे कर सकते हैं? सबके प्रति स्नेह, देवताओं के आगे जब भगत लोग जाते हैं तो देवताएं कोई पक्षपात थोड़ा नहीं करते होंगे, ये मेरा भक्त ऐसी है इसको नहीं दूंगा मैं, करते होंगे ऐसे, सबको एक समान, है ना? आज बाबा ने सेंटरों को भी याद किया है ना, चाहे दो सेंटर हैं लेकिन निर्विघ्न है, वो आगे हैं, और ज्यादा भी खोल दिया किसी ने लेकिन निर्विघ्न नहीं है, माया भी उतनी है तो वो जमा नहीं होता है। हाँ, तो हर एक मूर्ति चैतन्य मूर्ति है। आश्रम क्या है? बाबा के तीर्थ है, महातीर्थ है, जहां सब देवी देव और देवियां बैठे हुए हैं। तो सब भक्त के रूप में अगर कोई आए और देव देवी अपने आप को संभालने में लगे हुए हैं तो कैसे वो दृश्य कैसा होगा? देवी कोई खुद ही आंसू बहा रही है और सामने से भगत आ रहा है, वो भगत को अपनी व्यथा सुनाए तो क्या हाल होगा? फिर कैसा दृश्य होगा? तो हम तो संसार की आत्माओं के आंसू पोंछने वाले हैं, है ना? हम तो हमेशा दूसरों को हर्षित रखने वाले हैं, इसलिए बाबा जब भी अवतरित होते हैं ऊपर से तो आते क्या कहते हैं, आज बाप दादा बच्चों को देकर हर्षित हो रहे हैं। कभी बोला कि मैं बहुत दुखी है, मेरे बच्चे को इतनी समस्या में रहे, मुझे बड़ा दुख हो रहा है? खुश हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो जब भगवान अवतरित हो गए हमको देख के हर्षित, पता उसको ये अंदर से तो इतना ही नहीं है, फिर भी बाबा हर्षित हो रहा है। हाँ, आशाओं के दीपक जला दिए हमारे अंदर, ये तो हमको पता है कितने दीपक जल रहे हैं, कितने बुझे हुए हैं, लेकिन बाबा आके हमारे अंदर जगा देते हैं। तो जब बाबा हर्षित हो रहा है तो हम क्यों मूर्छित हो फिर, है ना? सही बात। हाँ, माता जी ने सर्टिफिकेट दे दी। तो हर्षित रहना हमेशा, क्योंकि बाबा ही हमारा वैसा ही है। तो जमा कैसे होता है? निर्विघ्न बनेंगे, चाहे हम थोड़ी सेवा करें, अपने आप को इतना मजबूत रखें, इतना शक्तिशाली बनाएं, निर्विघ्न बनाएं, दिव्य गुणों की मूर्ति बना के रखें कि सेवा स्वतः होती जाएगी, है? सेवा अपने आप पीछे आएगी, परछाई की तरह आएगी। किसी को अगर बोल बोलते हैं, स्नेह से हम भरे हुए हैं, तो बोल किसी को वो दिल में नहीं लगेंगे, अर्थात किसी को टोंट नहीं लेगा, क्योंकि हमारा स्नेह निस्वार्थ स्नेह है, आगे बढ़ाने का स्नेह है, एक बेहद का स्नेह है, है ना? तो ये स्नेह की श्रेष्ठता है। आज बाबा ने बताया ना, स्नेह की श्रेष्ठता कितनी है, ये स्नेह के साथ हम सेवा करते हैं, वो सेवा फिर माया जीत बनाती है। नहीं तो बीच बीच में हम क्या बोलते हैं कि सेवा में बहुत माया आती है, क्यों? क्योंकि स्नेह की कमी है। अगर स्नेह से भरपूर हैं तो अगर कोई बात भी होती है आपस में तो मिल बैठकर उसको सुलझा सकते हैं, अगर स्नेह नहीं है तो दूरियां बढ़ती जाएंगी, दिलों की दूरियां। भले वैसे हम पास पास में रह रहे हैं लेकिन मन की बहुत दूरियां होती हैं और वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि करने कभी ना कभी उन दूरियों का फिर विस्फोट भी होगा। इसलिए दूरियां नहीं हमारी बढ़नी चाहिए, स्नेह से स्वयं को सवेरे रोज, ये जो मुरली होती है ना, इसको रोज जो डेली की मुरली है उसको योग में कन्वर्ट कर देना। जैसे मान लो आज की मुरली सुन ली हमने, अब कल अमृत पिला करेंगे या शाम नुमा योग जब भी करते हैं तो ये सोचना कि स्नेह का सागर मेरे ऊपर निरंतर बरस रहा है, उसका सारा स्नेह मेरे अंदर जा रहा है, उसके सारे स्नेह की बातें मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं, मैं आत्मा जैसे भरपूर होती जा रही हूं, मैं आत्मा अनेक आत्माओं की प्यास बुझाने के निमित्त भगवान मुझे बनाता जा रहा है। ऐसे स्वयं को स्नेह से भरपूर गंगा बना लेना, गंगा अर्थात निरंतर बहने वाली, और अंत में सागर से मिलेगी ना। तो हम स्नेह से भरपूर गंगाएं हैं, तो इस मुरली को योग में धीरे धीरे परिवर्तन कर देना। और जो मुरली में बाबा कमियां बताते हैं, उन कमियों को भी देखना, जैसे उस स्नेह से वो कमियां सारी समाप्त होती जा रही हैं, बहती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, चारों तरफ स्नेह की लहरें, स्नेह की किरणें प्रकाशित हो रही हैं, सभी स्नेह से भरपूर हो रहे हैं, सभी के अंदर जो छोटी मोटी ऐसे मेरे आपस में अगर कोई हिसाब किताब भी है वो खत्म होते जा रहे हैं, निश्चल निस्वार्थ निर्मल स्नेह पैदा होता जा रहा है। तो मुरली को योग में कन्वर्ट करना है, तो फिर सेवाओं में टकराव नहीं होगा, नहीं तो संगठन बाबा ने कहा ना, संगठन में आते हैं तो संस्कारों का टक्कर। अच्छा, संगठन में संस्कारों का टक्कर था, ठीक है, लेकिन अपने ही संस्कार ऐसे होते हैं जो हम स्वयं ही अंदर टकराते रहते हैं, और वो और ही खतरनाक है, क्योंकि स्वयं के संस्कारों को बदलने के लिए स्वयं ही मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं को योग बल जमा करना पड़ेगा, स्वयं का निरीक्षण करना पड़ेगा, सूक्ष्म रूप से आत्म निरीक्षण करना पड़ेगा, उनकी चेकिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो होता नहीं है। लंबे समय तक योग लगाने के बाद भी यदा कदा कहीं दिखाई देता है संस्कार बदलते नहीं है, कहीं ना कहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, भगवान के प्यार में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बाबा ने कहा ना आज, लेकिन ब्राह्मण परिवार के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों जाती है, क्योंकि स्वयं के प्रति ही मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है अभी, स्वयं के अंदर हम खाली खालीपन अनुभव कर रहे हैं, स्वयं को परमात्म स्नेह से भरपूर नहीं किया है, स्वयं को शुभ भावना शुभ कामनाओं से भरपूर नहीं किया, अर्थात दूसरों के प्रति तो छोड़िए, अपने प्रति भी क्या मैं शुभ भावना शुभ कामना रखता हूं, अपने प्रति अपने ऊपर मैं रहम करता हूं, अपने प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना अर्थात कि कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर जा रहे, अगर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो माना मैं स्वयं के प्रति शुभ भावना कामना नहीं रख रहा हूं, दूसरों के प्रति भी नहीं फिर रख सकता है, क्योंकि स्वयं के अंदर रिकॉर्डिंग वही हो रही है तो प्ले भी तो वही होगा ना, भले मुख से प्ले नहीं हो रहा लेकिन वाइब्रेशन तो निरंतर वही जा रहे ना जो हम स्वयं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो स्वयं के ऊपर भी अटेंशन रखना है। इसलिए बाबा ने कहा ना तीन बातें, स्नेह शक्ति और अटेंशन प्रमाण, बच्चे अपने आप को शक्तिशाली या यथाशक्ति बनाते हैं, याद भी करते हैं कि भगवान ने हम सबको प्राप्त सब प्राप्तियां दी, सब प्राप्तियों से भरपूर किया है, पाना था सब वो भी पा लिया, लेकिन फिर भी बीच बीच में यथाशक्ति हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि सोचना और करना में अंतर पड़ जाता है, सोचते तो हैं प्लान तो बनाते हैं अपने प्रति लेकिन परिवर्तन नहीं होते, दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करते, पिछले संस्कारों को पकड़ के रखा हुआ, वो संस्कार हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो संस्कारों का टक्कर होता है, स्वयं के संस्कार ही टकराते रहते हैं, स्वयं को संस्कार ही टकरा टकरा कर अंदर स्वयं को जख्मी करते रहते हैं, फिर उस दुख को दूसरों को सुनाते भी नहीं और सुना भी नहीं सकते, क्योंकि हमने खुद ही अपना टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा, दूसरों को सुनाएंगे तो वो अपने अपना दुख सुनाना शुरू कर देगा, डबल हो गए फिर काम, होता तो यही है ना, कोई बोलेगा हाँ मेरा भी योग ऐसे लगा, फिर दोनों को सांत्वना मिल जाएगी, हम दोनों एक जैसे हो गए, तो ऐसे स्वयं को धोखा नहीं देना। आज भी मुरली में धोखे की बात कौन सी कहां थी, जो समय को अमूल्य समझकर डैश करते हैं तो डैश नहीं खा सकते, हाँ जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं तो कभी धोखा नहीं खा सकते, तो स्वयं को धोखा नहीं देना है, क्योंकि अनेक जन्मों से स्वयं को धोखा देने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए जो बताया ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ भावना शुभ कामना, एक और ये जो बात निकली कि स्वयं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की कमी है इसलिए दूसरों के प्रति भी नहीं होती है, कहीं ना कहीं हम स्वयं को अंधेरे में रख रहे हैं, संगठन में तो ठीक है हम योग लगा रहे हैं अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम अकेले में होते हैं क्या उस अकेलेपन में भी हम अपने पुरुषार्थ के प्रति सजग रहते हैं, कुछ मनन चिंतन में अपने आप को बिजी रखते हैं या कोई और भी बातों में चिंतन कर रहे हैं, फोन से आदान प्रदान कर रहे हैं, जिन बातों का नहीं करना चाहिए उन्हीं का कर रहे हैं, उधर से मैसेज इधर से मैसेज कर रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, अभी तो समेटना का टाइम बाबा कहते हैं, लेकिन हम विस्तार कर रहे हैं ना, विस्तार को सार मिलाना, पिछले संडे की मुरली में था ना सहनशीलता, तो सहनशील होंगे विस्तार को सार मिलाएंगे, वो शॉर्टकट रास्ते में जाएंगे, लंबा रास्ता नहीं बनाएंगे, तो कहीं हम अपनी यात्रा को यात्रा के रास्ते को लंबा तो नहीं करते जा रहे हैं, जिस रास्ते पर हमको चलना चाहिए उस रास्ते से हम भटक तो नहीं गए हैं, तो ये शुभ भावना शुभ कामना अपने प्रति जरूर रखनी है डेली। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्वतः होती जाएगी। दादियां, दादियों की क्यों सबके प्रति शुभ भावना कामना रहती है? क्योंकि उन्होंने अपने प्रति उतना गहरा काम किया हुआ है, इतनी गहन साधना की है, अपने संस्कारों को इतना तब्दील किया, परिवर्तन किया है कि वो शुभ भावनाओं और शुभ कामना की मूर्तियां बन चुकी थी। इसलिए उनके पास जाना क्यों अच्छा लगता है? और हम एक दूसरे दूरी बनाना समझते हैं कि इनकी दूरी रहना ठीक है, क्योंकि हमने अपने आप को भरा नहीं अभी तक। जो स्वयं को भर लेगा उसके पास ही पानी पीने के लिए आएंगे सभी, जो खाली होगा तब पीने के लिए कौन आएगा फिर? दादियों के प्रति आकर्षण क्यों होता था? क्योंकि इतना भरपूर कर लिया उन्होंने, हर चीज से अपने आप को भरपूर कर लिया। दादी जानकी के मुख से क्या सुनते थे? मैं और मेरा दो शब्द, मैं कौन मेरा कौन, उसमें सारा सार समाया हुआ। उन दो शब्दों में कितनी ताकत थी, जैसे सारा सारे ज्ञान की अनुभूति होती थी उसमें। पता चलता था कि इनके जो बोल है उसमें कितनी ताकत है। वो बोली जैसे दिल को एकदम पिघला देते थे कि इनके जैसा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने के लिए स्वयं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना बहुत जरूरी है। एक बार दादी रत्नमणि जी ने हमको टॉपिक दिया था, इसी हॉल की बात है, बहुत साल हो गए, रहम दिल कैसे बने। तो हम सभी 8-10 भाई बहने थे, लिख के लाए थे, तो फिर हमने भी लिखा था। तो सारा दादी ने पढ़ने के बाद बोला, एक बात तो लिखी नहीं जो जरूरी होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर रहम दिल बन ही नहीं सकते आप। तो उसमें यही बात है कि स्वयं के ऊपर रहम करेंगे तो सबके ऊपर कर पाएंगे, यही की बात है वो। तो स्वयं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना बड़ा जरूरी है। देखना है कि स्वयं के प्रति कोई अशुभ संकल्प तो नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, कोई अशुभ कर्म तो नहीं कर रहे हैं, अशुभ बोल तो नहीं निकल रहे हैं। तो कितनी और कौन सी बातें मुरली में थी? अभी और भी बातें हैं, आप सुनाओ शॉर्ट में अभी। हाँ जी, हाँ, सब बच्चों के साथ बाप का स्नेह इसलिए संतुष्ट है, स्नेह के साथ बाबा फिर विजय की माला को भी देखना चाहते हैं। विजय की माला छोटी है, स्नेह की माला लंबी है, स्नेह में सब पास है, विजय में नंबर वार है। और क्या कहा बाबा ने, सच्ची सेवा कौन सी है? जो निर्विघ्न हो, निस्वार्थ हो, योग युक्त हो, माया मुक्त हो। और क्या वो कहा बाबा ने, क्योंकि क्या होता है, जब हमको अगर होमवर्क मिलता ना तब तो हम कर लेते हैं, और स्वयं के प्रति जैसे बताया ना शुभ भावना शुभ कामना क्या, कि स्वयं को हमने सारे दिन में जो मुरली सुनी है उसको पढ़कर कितना याद कर रहे हैं। क्योंकि जब तक याद नहीं करेंगे तो अंदर भी नहीं समाएगी, पहला कदम तो याद करना ही है। याद करने के बाद ही वो हमारा बताया ना कि मुरली को योग में कन्वर्ट कर देगा, तो स्वयं का परिवर्तन होने लगेगा। नहीं तो धीरे 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 ना महसूसता अंदर आएगी उदासी की, अकेलेपन की, जैसे बाबा का प्यार अनुभव ही नहीं हो रहा है। कल के प्रदान में था ना, परसों शिव शक्ति कंबाइंड, शिव शक्तिमय कंबाइंड स्वरूप, तो कंबाइंड का अनुभव करना है, भगवान के महावाक्य हमारे से कंबाइंड हो जाए, हमारे कर्मेंद्रियों में समा जाए। इन उंगलियों को देखने से कुछ कुछ पॉइंट याद आने चालू हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे उसके ऊपर सेट कर देना। एक पॉइंट बाबा ने कहा कि तुम्हें पवित्र बनना है, योग बल जमा करना है, ऐसे धीरे मुरली से पॉइंट सवेरे सवेरे मुरली के क्लास के बाद जब योग होता ना उसी में पॉइंट रिपीट कर लेने और सेट कर देना अपने आप साथ, अपने कर्मेंद्रियों के साथ सेट कर देना उनको। तो ऐसे ब्रह्मा माँ की, माता पिता की शुद्ध ममता हम बच्चों को संसार की सर्व आत्माओं की आशाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा अभी भी अव्यक्त रूप से हमारी स्थिति को अव्यक्त बना रहे हैं। ऐसे शुभ दीपकों को, शुभ आशाओं को पूर्ण करने वाले दीपकों को, सदा जागती ज्योत को, और क्या क्या कहा बाबा ने, साक्षी और साथी, शुभ भावना शुभ कामना, ऐसे ढेर हैं जी, सच्चे सेवाधारी, विजयी रतन, विजय माला में आने वाले हैं जी, निर्विघ्न, माया जीत, और तो ऐसे सभी आत्माओं को ढेर सारी ओम शांति, ओम शांति।
नैनों में तेज तपस्वी का और मन है। साधा सुमन समर्पित।